سلام علیکم.
کیا خبر ہے میر دائی؟
خدا کا شکر ہے سب کچھ صحیح جا رہا ہے.
حیران نہیں ہوئے کہ میں یہاں کیوں ہوں؟
میں کیا کہوں، میں آپ کے کام میں دخل نہیں دیتا.
یہاں سے 200-300 کلومیٹر دور ایک پیٹرو کیمیکل ریفائنری بنانے کا فیصلہ ہوا ہے.
تو اس کا یہاں سے کیا تعلق؟
تعلق یہ ہے کہ پائپ بچھانے کی وجہ سے ان زمینوں کی قیمت بڑھ جائے گی.
لیکن یہ زمینیں تو لوگوں کی ہیں خزائی صاحب.
کیا زمین مالکان جانتے ہیں کہ یہاں آئل ریفائنری بننے والی ہے؟
ان چیزوں کو صرف آپ ہی جانتے ہیں.
میں اپنی دوستی کے احترام کی خاطر تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، ان سے چند ایکڑ زمینیں خرید لو.
اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے.
قرض لے لو، میں سفارش کروں گا کہ تمہیں لون مل جائے. یہ علاقہ مستقبل میں ہائی وے ٹرکوں اور گوداموں کا مرکز بننے والا ہے. اس وقت تم میرے مرحومین کو دعائیں دو گے.
اگر آپ اجازت دیں تو پہلے اس شروع کیے ہوئے پروجیکٹ کو تمام کر دیں.
تمہاری غلطی ہے جو لمبا کر دیا.
اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو لمبا نہ ہوتا.
کیا بات کر رہے ہو میرزائی؟ اگر یہ زمینیں آزاد نہ ہوئیں تو ڈیم اور دوسرے پروجیکٹ برباد ہو جائیں گے. جو پلان میرے ذہن میں، اگر اس کے لیے راستہ نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں.
عرض کیا ہے کہ رکاوٹ ہے، یہ نہیں کہا کہ منتفی ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک دو دنوں میں حاجی صاحب زمینوں کو خالی کر دیں گے، مدرسے کو بھی.
بہرحال خدا کے بعد مجھے تم سے امید ہے، میرے پروجیکٹ کو ناکام مت ہونے دینا.
آپ بے فکر رہیں.
ان شہیدی صاحب کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور کر دو.
میں اپنی پوری کوشش کروں گا.
جب تک لوگ شہیدی صاحب کی باتوں پر چلیں گے ہمارا کام آگے نہیں بڑھے گا. ان کو کونے میں بٹھا دو تاکہ مناجات کرتے رہیں.
ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں.
جو تم سوچ رہے ہو اس پر جلدی عمل کرو.
کیا کھنڈر خرید رہے ہو؟ کتنی کم رقم لکھی ہے دیکھیے تو ذرا حاجی صاحب.
یہ حاجی صاحب کے گھر کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہو سکتی ہے جو لگائی ہے.
احمد علی صاحب، آپ نے گاڑی میں مجھ سے کچھ وعدے کیے تھے.
حاجی صاحب، اگر یہ معلوم ہوتا مجھے کہ یہ اس گھر کو اس طرح آگ لگانے والا ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ لگا دیتا. آپ ذرا دیکھیے تو آخر کیا لکھ رہے ہیں یہ.
حاجی صاحب، یہ گھر آپ سے ہی تعلق رکھتا ہے، آپ کا راضی ہونا ہمارے لیے شرط ہے. اگر آپ راضی ہیں تو میں کام جاری
رکھوں. میں راضی ہوں، آپ جاری رکھیے، جاری رکھیے.
جیسی آپ کی مرضی.
مبارک ہو حاجی صاحب. یہ لیجیے حاجی صاحب، یہاں دستخط کیجیے.
آپ خود بھی تو راضی ہیں نا انشاءاللہ، میری خاطر نقصان مت اٹھا لیجیے گا.
آپ کی عنایت ہے حاجی صاحب، آپ کے ساتھ معاملہ کرنا ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے.
آپ کیسی باتیں کرتے ہیں حاجی صاحب، ان کی تو دلی خواہش تھی کہ سودا اس طرح سے انجام پائے.
لا الہ الا اللہ.
چاہو تو انگوٹھی نکال کر گھما کے دیکھ لو کس طرف رکتی ہے، کہیں سودے میں نقصان نہ ہو جائے تمہیں.
نہیں صاحب، جب سے حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ فال اور انگوٹھی کے چکر میں مت پڑو، میں نے بھی ان پر بالکل کراس لگا.
اچھا تو یہ بات ہے.
کہاں دستخط کرنے ہوں گے؟
حاجی صاحب یہاں دستخط کریں، دونوں پیپرز پر.
جی
حاجی صاحب، معاف کیجیے گا، اس سے نہیں اس سے. یہ کالا ہے منحوسیت لاتا ہے.
اچھا کیا آپ نے ابھی خود ہی نہیں کہا کہ ان خرافات اور فضولیات کو آپ چھوڑ چکے ہیں؟
شرمندہ ہوں حاجی صاحب، یہ ہمارے خون میں رچ بس گیا ہے. یہ رہی گھر کے قیمت کی باقی کی رقم اور وہ چیک بھی جو پہلے آپ کو دے چکا ہوں.
بہت شکریہ. بس یاد رہے کہ حاجی مہتوی صاحب اور ان کی بیگم چند دنوں تک اس گھر میں ہمارے مہمان ہیں جب تک کسی اور جگہ کا انتظام نہ ہو جائے.
حاجی صاحب، میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا.
خدا آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رہیں.
یہ آپ کی خدمت میں.
انشاءاللہ کہ مبارک ہو.
بہت شکریہ.
آپ کا بھی شکریہ. سلامت رہیں.
آپ کی بات ٹھیک ہے نورانی صاحب، लेकिन ये मस्जिद अरसे के बाद दोबारा ठीक हुई है। लोगों को उम्मीद है कि इस साल मुहर्रम की मजलिसें दूसरी जगहों की मजलिसों से ज्यादा अच्छी मुनक्किद हों।
जनाब मीरजाई साहब सही कह रहे हैं, शहर की दूसरी मस्जिदों में पूरी 10 रातों में न्याज दी जाती है। मुनासिब नहीं कि इस मस्जिद में जो बाजार के ताजिरों के हाथ में है सिर्फ 9वीं और 10वीं को ही न्याज दी जाए।
मैं नजरों न्याज देने का मुखालिफ नहीं हूँ, बस मेरा ये कहना था कि हाजी महदवी साहब की मौजूदगी में ये सब काम होना चाहिए।
जनाब 7 रातों की न्याज मेरे जिम्मे, बाकी 3 रातें आप साहिबान कबूल फरमाएं।
जनाब ये 3 रातों का खर्चा भी ज्यादा आएगा।
जनाब शहीदी साहब आ गए। देखिए मुहर्रम के लिए खर्च करने से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है।
आपका
खैर मकदम है। रौनक बख्शी,
जहमत दी आपको।
हाजी साहब आपकी करम फरमाई है जो यहाँ पर तशरीफ लाए।
आप साहब इख्तियार हैं, छोटा सा काम था मीरजाई साहब से, इसलिए आपकी बातों में दखलंदाज
हुआ।
आपको इख्तियार है। बहरहाल खुदा ने आपसे मिलने की तौफीक बख्शी। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए
मीरजाई साहब। ये मीटिंग किसी और वक्त के लिए टाल देते।
नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि 1-2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहरहाल कोई राज की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं।
तशरीफ
बैठिए।
या अल्लाह,
या अल्लाह, जनाब मीरजाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मीरजाई साहब, ये कंपनी के सामान की लिस्ट है और ये पैसे जो घर और भेड़ बकरियों को बेचने से हाथ आए हैं, ये हकीकत में आपनुमा कंपनी के कर्ज का 1/3 बनता है। 1/3 हिस्सा आपके बेटे आरश के जिम्मे है, जो बाकी बचता है उसके लिए इंशाल्लाह बंदे की जमानत पर कर्ज खाहों से थोड़ा सा टाइम और लेते हैं।
हाजी साहब, घर और सामान बेचने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल अगर थोड़ा सा और सब्र करते, मुरादी मिल जाता और कंपनी का सारा पैसा उससे ले लेते।
नहीं, बहरहाल लोगों को और मुंतजर नहीं रख सकते, और सिर्फ इस बहाने के शायद मुरादी मिल जाए लोगों से और सब्र नहीं करवा सकते। बहरहाल आप मेहरबानी करें, कल कर्ज खाहों के साथ एक मीटिंग रखें ताकि इंशाल्लाह इस मसले को हल कर लें।
1-2 अफराद तो है नहीं हाजी साहब, उनकी तादाद ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में हो पाएगा।
अच्छा, उनके चंद नुमाइंदे भी मौजूद हों तो काफी है। बहरहाल मैं मशहद जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा तो मुहर्रम शुरू हो चुका होगा। दिल में चाहता हूँ अगर मुमकिन हो तो उस वक्त तक ये मसला हल हो जाए इंशाल्लाह।
सबको मेरा सलाम हो।
वाह वाह,
अलैकुम सलाम जनाब सैयद साहब।
सलाम हाजी शहीदी साहब, मस्जिद आने को जी कर रहा था, आपकी आवाज सुनने के बाद मेरा चश्मो दिल रोशन हो गया।
आपका चश्मो दिल हमेशा रोशन हो। ये नाबीना है, हम तो नहीं है। तो जनाब मीरजाई, मैं मुतमईन रहूं है?
आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अर्ज किया है ना कि अफराद की तादाद ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में हो जाएगा।
खैर, उनको अपना पैसा चाहिए, एहतमालन खबर सुनेंगे तो फौरन आ जाएंगे।
जी अच्छा
अच्छा, मुझे माफ कर दें, आपका टाइम लिया, हलाल कर
अभी
दें मुझे।
थोड़ी देर और रुकते हाजी साहब।
बहुत शुक्रिया,
मैं चलता हूँ आपके साथ।
नहीं जहमत ना करें, आप तशरीफ रखें।
मीरजाई साहब आइए, मीटिंग की रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं।
ठीक है ठीक है, चलिए चलिए।
मीरजाई साहब ने
देखा तुमने मुझे किस तरह फंसा दिया, खासकर ताजिरों के सामने कहा कि मैं इनकार ना कर सकूं।
वाकई में क्या आप कंपनी का 1/3 देना चाहते हैं?
अच्छा तो बाकी 3 रातों के बारे में क्या फैसला किया?
इसलिए कि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बावजूद इसके कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे सबसे आखिर में जाके तुम्हारी बातों का पता चलता है।
मैं खुद तुम्हारी खातिर कुछ नहीं बताना चाहता था तुम्हें।
मोहम्मद हुसैन, बार बार इस बात को मत दोहराओ। तुम खुद को अकलमंद समझते हो, किसी के साथ मशवरा ही नहीं करना चाहते हो, जाके मुरादे से मिलते हो लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताते।
मेरे लिए जाल बिछाया गया मायरा, कम अज कम तुम तो समझो।
अगर मुझे तुमने पहले ही बताया होता तो मैं तुम्हें 1 गलती की तलाफी में 100 गलतियां नहीं करने देती।
ठीक है, मदद करना चाहती हो ना तो आप करो ना।
अब करके क्या करूं मोहम्मद हुसैन, अब मदद करने से क्या फायदा?
ठीक है, तुम सही कह रही हो मायदा। अब्बू जान, अम्मी जान इस जगह को बेचकर हमारी खातिर इस जगह से दरबदर हो गए। उनको अगर पता चला कि तुम रूट गई हो तो वो टूट जाएंगे। एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मुझसे परेशानी है, तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो। ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। रहो, पर मुझसे बात मत करो।
कौन? कौन हैं? कौन है?
सलाम।
अलैकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आपसे बात करने के लिए आया हूँ।
आओ अंदर। जब सुना कि मायदा से शादी कर रहे हो तो अपने आप से कहा कि अगर तुम्हारा इखलाक जरा भी अपने बाप पे गया हो तो मायदा के लिए बहुत है।
मैं खुद भी चाहता था कि अब्बू जान की तरह होता, हत्ता कुछ अरसे के लिए मदरसे भी गया, लेकिन हकीकत यह है कि मैं और अब्बू जान बहुत मुख्तलिफ हैं।
ये तो मुझे लगता है कि हमारे खानदान का रिवाज है कि अपने माँ बाप पे ना जाए। मैं अपने बाप पे नहीं गई, मायदा मुझ पे नहीं गई और तुम अपने बाप पे नहीं गए।
मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि मायदा के लिए एक अच्छी जिंदगी फराहम कर सकूं, पर ना हो सका, और अब ऐसी दलदल में फंस गया हूं जिससे निकलना मुश्किल है।
अरे बेटा, जिंदगी इसी का नाम है, खुद मुझे ही देखो।
आपका किस्सा मुख्तलिफ है। आप जब जलील साहब से जुदा हुई और ईरान से चली गईं तो आपके पास इंतखाब के लिए कई रास्ते थे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता रह गया है और उसी पर चलना है। मैंने फैसला किया है कि जाके खुद को पुलिस के हवाले कर दूं।
कोई चारा नहीं है तो क्या बदतरीन रास्ते का इंतखाब करोगे?
और कोई चारा भी तो नहीं है। सोचता हूँ मेरे इस इकदाम से शायद वो मेरी बातों पर यकीन कर लें।
ये बेवकूफाना रास्ता होगा। अगर खुद को पुलिस के हवाले करोगे तो वो समझेंगे कि सारा कसूर तुम्हारा है।
आप तो इस अंदाज से बात कर रही हैं जैसे, तो आप बताइए ना मैं क्या
करूं? आके हमारे साथ रहो।
कब तक रह सकता हूँ, ये कैसे मुमकिन?
जब तक मुरादी का पता ना चले।
मुरादी अब मिलने वाला नहीं है।
तुम कैसे इतने मुतमईन हो?
नहीं जानता।
दुआ करो इससे पहले कि पुलिस तुम्हारे पीछे आए मुरादी को ढूंढ सको। मैं कल मकसूदी के पास जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है।
बेदमिश का शरबत है, ऐसा आपके लिए मुफीद है, पी लें।
मेरे आसाब ऐसे नहीं ठीक होंगे।
मैं भी ऐसी ही चीजों से अपने पांव पर खड़ी हूँ। इतने अजीबो गरीब केस आते हैं कि क्या कहूँ।
एक बात साफ साफ बताओगी, मेरे दामाद का इन अजीबो गरीब केसेस से जो तुम्हारे हाथ में है क्या ताल्लुक है?
मैं शुरू से ही जब जमीनों की कानूनी हैसियत की तब्दीली के लिए रिश्वतखोरी से आगाह हुई तो इस केस में एक बा असर फर्द की तलाश में थी। मोहम्मद हुसैन साहबी मारूफ इंसान थे, हाजी शहीदी के बेटे होने के नाते बहुत कुछ कर सकते थे।
तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते?
तहकीकात से पता चलता है कि उन्हें कुर्बानी बनाया गया है। इस केस के ताने बाने जमीन खोरों के एक बड़े गिरोह से मिलते हैं जो नाजायज मालूमात हासिल करके कीमत बढ़ने वाली जमीनों को खरीद लेता है।
तो अगर इस केस के पीछे इतने बा असर अफराद हैं तो इस बीच मोहम्मद हुसैन क्यों रगड़ा जा रहा है? ये तो नेक लोग हैं, ठीक काम कर रहे थे।
हत्या के जायज काम के लिए भी आंखें खुली रखनी चाहिए। तुम्हारे दामाद की खानदानी हैसियत ऐसी है कि उन्हें ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है।
आप क्या किया जा सकता है, तुम क्या कर सकती हो?
उनसे कहो जो कुछ जानते हैं यहाँ आकर बताएं।
गिरफ्तार तो नहीं करवाओगी?
नहीं तो।
तुमसे एक दरख्वास्त है।
बोलो।
किसी को पता ना चले मोहम्मद हुसैन ने तुम्हें कुछ बताया है।
शरबत पियो, गर्म हो गया।
क्या कहती? कहती है धोखा खा गए। शहीदी साहब के बेटे होने की वजह से तुम्हारी बेखबरी में तुमसे नाजायज फायदा उठाया गया।
कौन सा नाजायज फायदा? हाजी साहब ने तो कहीं एक बार भी हमारी हिमायत नहीं की। लोन लेना चाहता था, उन्होंने जमानत तक नहीं दी हमारी।
शहीदी फैमिली से ताल्लुक होना ही काफी है कि कोई तुमसे नाजायज फायदा उठाए। कहती है अगर उम्र कैद ना हुई तो यही बहुत बड़ी बात होगी।
समझ नहीं आ रहा है मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है। ज्यादा से ज्यादा अगर रिश्वत देने का इल्जाम साबित होता है तो 4-5 साल जेल जाना पड़ेगा, बस और क्या हो सकता है।
मसला इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। कुछ ऐसी बातें कह रही थी कि मैं नहीं समझी, लेकिन अगर सच कह रही हो तो बहुत बुरा होगा।
क्या मतलब? वो क्या कह रही थी?
तो तुम मकसूदी के लिए लैंड माफिया के एक बड़े गिरोह तक पहुंचने का एक क्लू हो। हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा।
किसके? मकसूदी के पास?
हाँ,
जिस मकसूदी को मैं जानता हूँ उसके लिए दोस्ती वोस्ती कोई मायने नहीं है, सिर्फ काम अहम है।
बहरहाल अभी उनके पास जाना होगा, तुम अभी तैयार होके आ जाओ। जाओ ना।
यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं जिससे पता चले कि बात क्या है।
तो क्या करें?
कुछ नहीं, अपने मोहतरम दामाद से पूछें।
यकीन कर लें, पहली दफा उसको यहीं देखा था। दोबारा जब उसको सबक सिखाने आया तो वो भाग चुका था।
माशाल्लाह, क्या कहने हैं, आप खुद ही मुद्दई और खुद ही जज बन गए। गोया किस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है।
हम चाहते थे कि मसले को किसी न किसी तरह हल कर दें ताकि बात रुसवाई तक न पहुंचे।
अगर तुम्हें अपनी बेगुनाही का इतना यकीन था तो उसी वक्त जाके पुलिस को बता देते कि पैसे अकाउंट में डालने का असल किस्सा क्या है।
अगर ऐसा करता तो फौरन गिरफ्तार हो जाता।
चंद दिन की गिरफ्तारी केस के असली मुलजिम के फरार होने से बेहतर।
अब क्या करें?
कुछ नहीं किया जा सकता, जाके खुद को हवाले कर दो।
आइए, ये बाग बाजार के एक बाअसर फर्द अली रजा हाफिजी के नाम है।
उसका कोई केस है?
नहीं, कैसा केस, आइए, मैं खुद उसको अच्छी तरह जानता हूँ। लोग बाजार में उसके नाम की कसम खाते हैं, मोतबर भी है और खैर खैरात वाला भी है।
तो उसको कैसे नहीं पता कि मुरादी जाके उस बाग में छिप गया है?
अगर वो वहाँ गया हो
तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या?
आप तो नहीं, लेकिन खबर के जराए झूठ हो सकते हैं।
मेरी खबर का जरिया मोहतबर है, मुझसे वादा लिया है कि मैं उसका नाम नहीं लूंगी, सिर्फ मालूमात पहुंचाऊंगी।
दिलचस्प है, इस फाइल में कुछ ऐसे जराए हैं जो मोतबर हैं लेकिन खुफिया हैं, और ये बतौर मेहरबानी हमें खबर दे रहे हैं।
तो क्या आपके पास भी मोहतबर जरिया है?
जी हाँ, लेकिन मुझे खुद आगे बढ़कर काम करना होगा ताकि मैं देखूं क्या कुछ कर सकता हूँ।
आ जाओ, आने दो बस।
माफ कीजिएगा, मिर्जाई साहब मस्जिद में हैं?
जी हाँ, मिर्जाई साहब मस्जिद में हैं।
माफ कीजिएगा,
तुमको पता है मिर्जाई साहब कहाँ हैं?
क्या बुला लूं उनको?
तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मिर्जाई साहब, आपसे को मिलने आया
है। आता हूं।
सलाम
भाई। वाह कर्नल साहब, कैसे हैं आप?
ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है।
ये देख, सीढ़ियों पर ना रहे, उनको कमरे के पीछे रखवा दो। मुझसे कोई काम था?
थोड़ी देर पहले मैं हाफिजी साहब के पास गया था, बाग के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो आपको बेच चुके हैं।
हाँ, 8-9 महीने पहले खरीदा था, लेकिन अभी तक इंतकाली नहीं हुई है। लेकिन क्यों?
दरअसल हमें कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट मिली थी कि मुरादी वहाँ कुछ दिनों के लिए छिपा हुआ था।
यानी फरार होने के बाद वहाँ गया था?
ऐसा ही लगता है।
कितना अय्यार मक्कार है, ऐसी जगह गया है कि किसी के वहमो गुमान में भी ना आए।
वो कैसे?
मुरादी ने तकरीबन 6 महीने पहले वो जगह मुझसे किराए पर ली थी।
इसी तरह जबानी?
नहीं, देकानी साहब के एजेंसी में जाकर कॉन्ट्रैक्ट भी लिखवाया।
क्या मैं देख सकता हूँ?
यानी आपको मुझ पर यकीन नहीं है?
नहीं, बस इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ।
नहीं ना, यकीन नहीं है। ठीक है, मेरी दुकान पर चलते हैं, वहां मैं आपको कागजात दिखा दूंगा। तुम लोग कहीं नहीं जाना, मैं चावल घी लेकर अभी आता हूं। ये लीजिए।
आपने कहा 1 साल के लिए किराए पर लिया था?
कर्नल साहब, आपने मेरी बात पकड़ ली। हाँ, 1 साल के लिए किराए पर लिया था, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। 6 महीने गुजर चुके हैं, यानी 6 चेक वसूल हो चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो अपने अकाउंट की प्रिंट लेके दिखा दूं।
इस बाग को किस लिए किराए पर लिया था?
क्या बताऊं, उस वक्त बाग की हालत ठीक थी, कभी कभी फैमिली के साथ और कभी अकेले वहां जाया करता था। मुरादी, खुदा तुम्हें समझे, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। पता नहीं इस लड़के पर क्या मुसीबत नाजिल हुई थी जो इतने बाइज्जत घराने में से है इस तरह का निकल गया।
इतने साल उसने आपके साथ काम किया, कैसे नहीं समझ सके कि वो भरोसे के काबिल नहीं है?
उसने मेरा नमक खाया है। क्या इंसान इतना भी बेशर्म हो सकता है? मैंने उसके साथ नेकी की और नतीजा ये निकला।
सलाम।
अलैकुम
सलाम। अलैकुम सलाम।
हाजी साहब ले आया हूं।
बहुत शुक्रिया। यही मजीद, उसका भाई, बेरोजगार था, फौजी खिदमत से वापस आया था। मैंने उसका हाथ थामा और यहां ले आया।
मस्जिद के बाहर इंतजार हो रहा है, जाएं जाकर मस्जिद के चावल और घी का इंतजाम देखें।
तो क्या आप नहीं आ रहे हैं?
मैं आपके इस मुलाजिम से कुछ सवाल पूछकर आता हूं।
जनाब कर्नल जहांगीरी, हाजी अली भाई, आप मुजरिम को यहां ढूंढ रहे हैं अपने 10-12 साल के दोस्त की दुकान में?
आप परेशान हैं? आपने खुद कहा था यहां आने के लिए। मैं तो सिर्फ बाघ वाला मामला समझना चाहता था, जो अब मैं पूरी तरह समझ गया। क्या मैं उसको पुलिस स्टेशन ले जाकर सवालात करूं?
नहीं, यही सही है। मजीद
जी जनाब,
मेरा कोट लेकर आओ। मैं चाहता हूं आप आखिर तक जाएं, हर कोने खुदरे में ढूंढें, शायद आपको कोई इस सिलसिले में सुराग मिल जाए। मजीद इसको तिजोरी में रख दो, आओ बैठो और कर्नल साहब के सवालों का जवाब दो ताकि ये मुतमईन हो जाएं। खुदा हाफिज।
तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया?
नहीं मालूम, असल में मेरे भाई की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि उसका एक जाती घर हो। यानी हमेशा वो ये कहता था कि ये तनख्वाह जो मैं उठाता हूं, अगर मैं 7-8 साल तक कुछ खर्च ना करूं तब एक मामूली सा घर खरीद पाऊंगा।
क्या इसका यह मतलब है कि रिश्वत देकर दूसरों को धोखा दे?
नहीं जानता, मैंने इस मसले पर ज्यादा गौर नहीं किया, नहीं बता सकता कि उसका काम सही था।
इतने लोगों को बर्बाद करने वाला कैसे सही हो सकता है? इन दिनों में तुम्हारा उससे राब्ता नहीं हुआ?
जी नहीं।
कोई मुलाकात, साथ में खाना वगैरह?
जी नहीं।
फोन से राब्ता?
बिल्कुल नहीं।
मैसेज या ईमेल वगैरह?
कुछ नहीं।
तुम अपनी इस तर्ज फिक्र के साथ इस बारे में तुम्हें कोई खबर हुई तो हमें बताओगे या उसकी तरफदारी करोगे?
मेरे भाई ने मोहल्ले में हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मेरी अम्मी मोहल्ले में किसी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रही हैं।
तो फिर मैं इंतजार करूं?
ठीक है, अगरचे मुझे उसके साथ हमदर्दी है, लेकिन यकीन करें कि अगर कोई खबर हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
उम्मीद है तर्क नशा और अमामा और अबा और तरबियती काम के बहाने का किस्सा दोबारा तकरार ना हो।
जी।
उस वक्त मैंने जनाब महदवी साहब की वजह से तुम्हें छोड़ा, वरना गिरफ्तार करवा सकता था।
सलाम।
कैसा सलाम मोहम्मद हुसैन? डॉक्टर साहिबा सलाम अर्ज है।
क्या हुआ दाऊद साहब?
डॉक्टर साहिबा तो बाहर थीं, इनको यहाँ के हालात का नहीं पता। तुम तो यहाँ पले बड़े हो, क्यों बेवकूफी की हरकतें करते हो?
आप तो यहीं पले बड़े हैं, आप बताइए क्या हुआ है?
आप इतना भी नहीं जानती कि मैं किस बात पर परेशान हूँ? इतना बिला सोचे समझे हर काम में टांग अड़ाती हैं कि काम खराब हो जाता है।
आप मोहम्मद हुसैन के मसले में इतना बेकार बैठे रहे कि हम खुद ही कुछ करने पर मजबूर हुए।
मैं बेकार ही टांग अड़ा रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन, कुछ वसीयत वगैरह करना हो तो कर लो, क्योंकि एक लंबी मुद्दत के लिए जेल जाने वाले हो।
दाऊद साहब बता भी दीजिए कि क्या हुआ है।
बंदे खुदा, तुमने किस लिए जाके पुलिस को बताया? क्यों भिंडों के छत्ते को छेड़ा? पुलिस को तो तुमसे कोई काम नहीं था, खामखा जाके उनको छेड़ दिया। बताओ मुझे,
कौन सी पुलिस? मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी।
माफ करना, तुम्हारी ये दोस्त सरकारी वकील है?
नहीं, तहकीकाती इदारे में काम करती है।
इंसान को सिर्फ वकील, डॉक्टर या मुस्तहिद से अपना राज बयान करना चाहिए। कौन सी दोस्त मोहतरमा? चंद दिन स्कूल में एक बेंच पर बैठने का यह मतलब नहीं कि वो मोहम्मद हुसैन के लिए फिक्रमंद हो। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आज किसी बड़े शहर और कल दारुल हुकूमत को ट्रांसफर होने की सोचते हैं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मुरादी को ढूंढने में लगाया होगा, फिर सोचा होगा कि क्या किया जाए जो हंगामा हो। ये सोचा होगा कि एक बुनियादी काम किया जाए, इसलिए हाजी शहीदी के बेटे को फंसा दिया। इससे बेहतर कौन हो सकता है? तो तुम भी बहुत सीधी सादी हो। ये दोस्तियां और फिदाकारियां हमारे बचपन के जमाने की बातें हैं, अब ये खत्म हो चुकी हैं। अगर कुछ बाकी था तो वो भी मुर्तजा के साथ चला गया। इंसान को सिर्फ अपने रिश्तेदारों पर एतमाद करना चाहिए, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम सब इस दलदल से सही सलामत निकलें तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तब जाकर मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे जितना किसी को भी ये मुश्किल हल करने की फिक्र नहीं होगी। मैं इस बारे में आरिश की कसम खाता हूं।
हमने भी अगर उन्हें कुछ बताया तो ये सोचकर कि शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें।
अगर चाहे तो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो मुझे हर चीज से मुत्तला रखो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
उठो, ज्यादा मातम करने की जरूरत नहीं है।
सलाम
जनाब, माफ कीजिएगा देर हो गई।
अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया?
कुछ नहीं, मामूली किस्म के सवालों जवाब।
ओफो,
उन्होंने कोई खास बात नहीं पूछी जनाब।
यह खास चीज ना पूछना 100 सवालों से बदतर है। इन्हीं गैर मुतालिका बातों के दरमियान से वो अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता।
नहीं जनाब, मेरा ध्यान था।
अब बताओ अभी क्या पूछा।
मिर्ज़ा साहब, आपकी बात काट रहा हूं।
कोई बात नहीं,
मुझे जल्दी से मदरसे पहुंचा सकते हैं, देर हो गई।
जी, इतनी जल्दी क्यों हाजी साहब?
हाजी शहीदी साहब का दरसे अखलाक है, मैं फोन पर बातों में मसरूफ था, बिल्कुल भूल ही गया, बहुत ज्यादा देर हो गई।
मुझे अकबर अब्दी का एक पुराना ड्रामा याद आया जिसमें वो बोरी कंधे पर लेकर फिरता था।
फिर स्कूल जाने में देर हो गई। इत्तेफाक से मुझे खुद भी वही ड्रामा याद आ गया।
जी हाजी साहब, जाओ हाजी साहब को पहुंचा
देते हैं, खुदा महफूज रखे।
मजीद
जी जनाब,
ये लो।
ये क्या है?
गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है।
मेरे पास तो अपनी गाड़ी है।
ये भी तुम्हारी है? मेरे पास अपनी गाड़ी है और वो भी ठीक है। एक 0 मीटर गाड़ी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे ख्याल में ये किसके लिए खरीदी है?
लेकिन
जाओ मजीद, हाजी साहब को देर हो रही है।
क्या है मजीद साहब, तुम किस फिक्र में खोए हुए हो?
कोई बात नहीं हाजी साहब, बस आपकी बात ने मेरे जहन को थोड़ा मसरूफ रखा हुआ है।
मैंने तो कुछ नहीं कहा।
अभी बहुत जल्दी है कि मुझे ऐसी गाड़ी दी जाए।
तुम ही तो कह रहे हो कि मिर्जाई साहब ने ये तुम्हारे लिए खरीदी है, तो जरूर तुमने कोई कमाल देखा होगा जो तुम्हारे लिए ऐसी कार खरीदी है।
नहीं जानता हाजी साहब, लेकिन उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। ताजिरों के बकौल वो मुझ पर एहसान करना चाहते हैं।
भाई मजीद, इंसान जब कोशिश करता है और हलाल तरीके से रिस्क कमाता है तो फख्र के साथ उसको दूसरे मोहताज अफराद पर खर्च करना चाहिए। मीरजाई साहब तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें किसी और की करनी चाहिए। इमाम सादिक फरमाते हैं, इंसान के हर नेक काम के लिए एक मुवक्किल होता है। नमाज, रोजा, हज, जिहाद और इस तरह के आमाल वगैरह उन्हीं फरिश्तों के जरिए आसमान तक जाते हैं और कुर्बे इलाही तक पहुंचते हैं। सिर्फ सदका और इन्फाक ही ऐसी चीज है जो बगैर किसी वास्ते के खुदावंदे आलम तक पहुंचती है। आप पैसा कमाएं और अल्लाह की राह में खर्च करें, कोई एतराज नहीं करेगा। और हाँ, तुम्हारे इस दोस्त अब्बास का क्या हुआ?
हाजी साहब, जितना कहता हूँ नशा छोड़ने का ये तरीका सही नहीं है, वो मान ही नहीं रहा।
यानी दोबारा उसे तहखाने में बंद कर दिया?
जी हाँ।
मजीद साहब, लगता है तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हो।
अरे हाजी साहब, मैं तो रोजाना आपकी तकरीर सुनता हूँ।
ये बहुत ही पुराने और रिवायती तरीके हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
यकीन करें, जितना भी इससे कहा कि आओ हाजी साहब बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं।
हाँ, जरूर कहा होगा कि मौलवियों के इस काम से क्या ताल्लुक।
तकरीबन ऐसी ही बात कही थी।
ये बताओ कि उसके वालिदैन को पता है?
अफसोस कि उसकी माँ को तो पता है, लेकिन बाप नहीं है उसका।
क्या मतलब? कि खुदा को प्यारे हो गए?
नहीं, अब्बास 4-5 साल का था तो उसके माँ बाप अलग हो गए थे।
पहले तो ये कि ये अब्बास साहब आखिरकार कुछ मराहिल तय करने के बाद मनुष्यात के आदि हुए होंगे,
दूसरे ये कि नशा करने का पहला सबब हमेशा नफसियाती और ज़ाती नहीं हुआ करता, बल्कि इसके बरखिलाफ होता है। हो सकता है कि यह किस्सा माहौल और घराने से शुरू हो। सबसे पहले अब्बास को हालात की संगीनी का एहसास करना होगा, ताकि नशे से निजात की कोशिश शुरू करे। मतलब समझे?
क्या मतलब?
मतलब ये कि जैसे कि उसने अपने अंदर नशे के मुहर्रिकात पैदा और मजबूत किए हैं, अभी उसको नशा छोड़ने के मुहर्रिक को अपने अंदर मजबूत करना होगा।
अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपको तो बहुत कुछ आता है।
और क्यों मजी साहब, ऐसा ही है। तुमने मुझे अभी समझा ही कहाँ है। हकीकत यही है।
खिलकत का कानून ये है कि अगर आप दुनिया पर मालकियत का एहसास नहीं करेंगे और दुनिया को कम चाहेंगे तो वो और ज़्यादा आपके पास आएगी। एक और इलाही सुन्नत आजमाइशात और मसाइब की सुन्नत है। करबला का वाकया इलाही इम्तिहानात और मसाइब से भरा पड़ा है। शायद ही कोई इंसान हज़रत ज़ैनब कुबरा की तरह इतने बड़े इम्तिहानात से सुरखरू निकल सके। तशरीफ़ रखें।
शुक्रिया।
सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो इम्तिहान के जिस बीबी ज़ैनब ने सिर्फ आधे दिन के अंदर अपने ख़ानदान के बेहतरीन जवानों और अजीज़ो दिलबंद बेटों को खो दिया, वो इतने बड़े इम्तिहान से गुजरीं, लेकिन ना सिर्फ ये कि अपने परवरदिगार से बदगुमान नहीं हुईं, बल्कि यजीद के दरबार में फरमाया, मा रईतो इल्ला जमीला। कितना सब्र था उन अजीम बीबी। खुदा के फजल से इस साल हमें तौफीक नसीब हुई है कि एक फाजिल और तजर्बाकार मुकर्रर हमारे दरमियान तशरीफ लाएं, जो तुल्लाब तबलीग के सिलसिले में कम तजुर्बा याफ्ता हैं, वो जनाब महदवी साहब से मुराजिया करें और उनके तजुर्बों से इस्तेफादा करें। या रब, हमारे दिलों को मोहब्बत की रोशनी से महरूम ना फरमा।
हाजी साहब इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज़।
या अल्लाह।
खुदा हाफिज़।
या अल्लाह।
खुदा हाफिज़।
तुम कहाँ जा रहे हो? मुस्लिम जाना मत, एक मिनट यहीं पर रुको, काम है।
मुस्लिम, जरा एक मिनट रुको, मुझे तुमसे काम है।
रुको, मैं भी आता
हूं। रुको तो सही।
मैदी साहब, एक मेहरबानी करेंगे?
जी बोलिए।
आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और मदरसे से चले जाएं। आप दोनों से बोल रहा हूं।
मुस्लिम साहब, आप अपनी इज्जत का ख्याल रखिए,
यहाँ पर ये सब बातें करने का मौका नहीं है।
हम यहाँ पर 4 रकअत नमाज पढ़ते हैं, नहीं चाहता कि शुबा पैदा हो।
आप इतने पाक हैं कि नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जाइए, तशरीफ ले जाइए।
बिल्कुल मुफीद और मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मुहर्रम और सफ़र की आज़ादारी के अय्याम में तबलीग की ज़रूरियात में से गलत और खुराफात और गैर मुस्तनद बातों से परहेज़ करना है, और इमाम हुसैन की आज़ादारी के आला मारिफ और तालीमात का बयान करना है। हमें चाहिए कि आशूरा के वाक़े के बारे में लोगों की शिनाख्त में इजाफा करें। आप तवक्कुल भी करें और तवस्सुल भी करें, लेकिन अफसोस के साथ कि बाज मौलवी सिर्फ लोगों को रुलाते हैं।
उस्ताद माफ कीजिएगा, अशको गम जरूरी है या करबला की रजमिया दास्तान?
मुझे याद है जब मैं पहली दफा तबलीग के लिए गया था
जी,
ये मेरे लिए बहुत अहम था कि मैं ऐसे मसाइब पढ़ूं जो सबको रुला सके। इसीलिए मैंने बाज अल्फाज को हाईलाइट किया था और अरबी इबारत पर जेर जबर लगाए थे। अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। मुहर्रम की उन्हीं इब्तदाई रातों में एक रात जो ही मैंने पढ़ने के लिए गला साफ किया, बिजली चली गई और वहां अंधेरा हो गया। अब जिस कागज पे मैंने मखसूस पॉइंट को हाईलाइट किया था वो नजर ही नहीं आ रहा था। अब वो रात मैंने किस मुसीबत में गुजारी खुदा जानता है। वो बड़ी अजीब रात थी जिस पर मैं खुद ही हंस रहा था। अब इजाजत दें मैं असल मतलब बयान करता हूं। ये अश्क और मातम सिर्फ अश्क और मातम नहीं है। इमाम हुसैन की मजलिसें, इमाम हुसैन की आजादारी की मजलिसें जुल्म के खिलाफ मजलिसें हैं, तसल्लुत के खिलाफ मजलिसें हैं, जमाने के यजीदों, शिमरों और इब्ने ज़ियादों के खिलाफ मजलिसें हैं। इमाम हुसैन की जिंदगी ना सिर्फ शियों के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि दुनिया के तमाम आजाद लोगों के लिए एक सबक है। मुस्लिम साहब क्या बात है, जो स्प्रिंग की तरह उछल रहे हैं, कूदे जा रहे हैं।
हाजी साहब मेरे ख्याल से आप जमाने के शक्काक लोगों के बारे में भी कुछ कहें।
जी जरूर।
हाजी साहब मसला इससे कहीं ज्यादा हसास है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग यहाँ को गजबी समझते हैं पहले उनके बारे में वजाहत हो जाए, उसके बाद दरसो मुबाहिसा शुरू करें।
जनाब मुस्लिम मेरे भाई, इन खुदा के बंदों के दिलों में शक और सवाल पैदा हो गया है। किसी के सवाल का जवाब इतनी तुंदी से नहीं देना चाहिए मेरे भाई।
लेकिन हाजी साहब ये शुभा नहीं है, ये नमक हरामी है।
जिस तुंदी से आप पेश आ रहे हैं ऐसे में अपने दिल की बात कहने की कौन जरूरत कर सकता है भला, बताइए मुझे।
हाजी साहब क्या इजाजत है कि मैं एक सवाल पूछ सकूं?
ये लीजिए, देखिए, ऐसे सुकून और आराम में बहस को आगे बढ़ाने को जी करता है, फरमाइए।
हाजी साहब अगर फर्ज करें हिबा का मसला सही ना निकले और आखिरकार साबित हो जाए कि हाजी हबीब के वरसा की बात सही है, तो क्या हम शरई लिहाज से जिम्मेदार हैं?
नहीं।
तुम क्या कह रहे हो शेख फरीद?
एक सवाल है
जनाब। फर्ज करें कि ये बात साबित हो जाती है, हमें तो पता नहीं था कि बात क्या है। क्या पता था?
मैं ये कहता हूँ कि ये जो बाज असातीद के जहन में आया है कि हाजी शहीदी साहब ने गफलत की है, ये सोचते हुए उन्हें शर्म नहीं आई?
अरे भाई हाजी महदवी साहब, आप भी इस बहस को बंद कीजिए। हम लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, हमें दूसरे मौजूदात पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
वल्लाह मुझे हाजी शहीदी साहब के अमल पर किसी तरह का कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी तो मासूम नहीं है। शायद नाखास्तगी में उनसे कोई गफलत हो गई हो।
हाजी साहब आप तो खुद बेहतर जानते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि जब हजरत अली ने मेहराब में जरबत खाई तो बाज लोगों ने कहा कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे?
मुस्लिम साहब तुम्हारी ये बात यहाँ पर मौजूदियत नहीं रखती, क्योंकि यहाँ जितने भी अफराद हैं उनको हाजी शहीदी साहब के ईमान, अकीदे और सच्चाई पर कोई शक नहीं है।
हाँ बिल्कुल शक नहीं।
लेकिन उनको ये तो हक हासिल है ना कि वो सवाल पूछ सके।
सवाल पूछें, लेकिन हाजी शहीदी साहब के काम पर एतराज ना करें।
जी जरूर, लेकिन यहाँ पर किसी का ये मकसद भी नहीं है। आप बेहतर है पहले की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें। खुदा ना ख्वास्ता कोई गफलत हुई भी हो तो किसी की गर्दन पर कोई कर्ज नहीं है। जी आप लोग तशरीफ ले जाएं। या अल्लाह।
ऐ मेरे खुदा।
क्या हुआ?
देखो ये क्या लिखा है।
हाजी साहब,
हेलो बरात अली, तुम्हारे पास इंटरनेट है?
मोहम्मद हुसैन तुम्हारा फोन है।
शुक्रिया। हेलो।
हेलो मोहम्मद हुसैन, इंटरनेट से कनेक्ट हो तुम?
हाँ लेकिन क्यों?
रुको बताता हूँ।
क्या हुआ बरात अली?
जरा नेट तो खोलो।
जरा एक मिनट रुको, माफ कीजिए मैं जरा इसको ले लेता हूँ। हाँ बोलो।
कंप्यूटर पे बैठे हो?
हाँ बताओ।
doorinnews.com पे जाओ, चलेगा?
होल्ड करो, होल्ड करो। खुल नहीं रहा है बरात अली, तुम बोलो।
लिखा एक मारूफ आलिम का बेटा लैंड माफिया के केस के बाद कुछ नफीस कालीनों को स्मगल करना चाहता था कि पुलिस की होशियारी से वो पकड़ा गया और पुलिस ने इस मामले में आलिम के बेटे से पूछताछ शुरू कर दी।
क्या हुआ?
हेलो,
क्या हुआ?
8 ذلحج کو مکے سے امام حسین کے نکلنے کا سبب کیا تھا؟ کافی تعداد میں لوگ حج کے اعمال ادا کرنے آئے ہوئے تھے. بہت بہت شکریہ. اس اہم اور مقدر ساز مشن کے آغاز کے لیے بہترین وقت تھا تاکہ اس سفر کے مقاصد کے بارے میں لوگوں کی صحیح طرح سے اطلاع رسائی.
میں آتا ہوں ابھی.
ٹھیک ہے.
یعنی امام نے اس زمانے کے تمام تبلیغی وسائل سے فائدہ اٹھایا, حتیٰ ان کی حرکت کا وقت بھی طے شدہ تھا. وہ اپنے خطبوں میں فرماتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں مجھے قتل کیا جائے گا بھیڑیے میرے بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ کر رہے ہیں, اور اس سے کوئی مفر نہیں. میں خدا کے امتحان پر صابر ہوں اور وہ مجھے پورا اجر دے گا. تو جس کو ایثار کرنا ہے اور اپنی جان کی قربانی دینی ہے ہمارے ساتھ آئے. تو جان لو کہ میں کل یہاں سے حرکت کروں گا.
باہر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے.
جاؤ جا کر بول دو کہ میں آتا ہوں.
کیا مطلب ہے
لوگوں کے اتنے عظیم اجتماع کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ مارا جاؤں؟ نبی کا نواسا لوگوں سے مدد مانگے اور کوئی ان کا ہاتھ نہ پکڑے. امام نے چپکے سے لوگوں سے نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ مارا جاؤں, بلکہ اونچی آواز میں اعلان کیا, صدا دی کہ سب سنیں تاکہ قیامت کے دن کوئی نہ کہہ سکے کہ میں نے نہیں سنا تھا یا میں متوجہ نہیں تھا. کل انشاءاللہ اس بحث کو آگے بڑھائیں گے. ایک صلوات.
اللہم صلو علی محمد.
شاید اب تک سب سے دردناک ترین اور غم انگیز ترین مجلس جو میں نے سنی ہے وہ مصائب ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں اور زیارت ناحیۂ مقدسہ کے نام سے مشہور ہیں. سلام ہو اس بے یارو مددگار مدافع پر, سلام ہو ان خون میں خضاب شدہ محاسن پر, سلام ہو اس خاک آلودہ رخسار پر, سلام ہو اس بدن پر جس کا لباس لوٹ لیا گیا. حسین سے عشق میں نے اس چھوٹی سے بچی سے سیکھا ہے کہ جس نے کربلا کے منظر میں سورج کو سیاہ بنایا تھا تاکہ شہدا کے بدن دھوپ کے نیچے نہ جلے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انجا